نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے 13 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں تفسیر. اب آپ اوپر لکھیے تفسیر آیت نمبر 6 سے 13 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے، اانذرتہم، چاہے آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا لم نہیں تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے دیکھا پچھلے سبق میں متقین کی نشانیاں، اور وہ ہی لوگ ہیں جو کہ کامیابی پانے والے. اب وہ پانچ آیتیں گزر گئیں متقین کے ذکر کے ساتھ. اب دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 اور 7. یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. 6 اور 7 آیت میں کفار کا ذکر آئے گا. پھر آیت 7 سے لے کے 20 تک، سوری 8 سے لے کے 20 تک آپ دیکھیں گے ذکر ہے منافقین کا. تو اگلی 13 آیتیں پھر منافقین پہ آئیں گی. اب آپ کو سمجھ آ گیا، جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے اس چیز کو یاد کر لیں. پہلی 5 آیات کس کی ہیں؟ متقین کی. دوسری 2 آیات کس کی ہیں؟ کافروں کی. تیسری ایک اور کیٹیگری بتائی گئی، اگلی 13 آیات کس پر ہیں؟ منافقین پہ. یہ آپ کو بات یاد ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج ہم کافروں کی بات پڑھیں گے اور منافقین کی بات پڑھیں گے، مگر پوری نہیں، اس کو کمپلیٹ کریں گے، ہم ہاف دیکھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ دنیا میں 3 ہی گروہ ہیں، یا تو کوئی متقی ہے، یا کافر ہے، یا منافق ہے، اس کے علاوہ چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تینوں ہی ہیں جن میں ہم کہیں بھی کھڑے ہوں گے، یا کوئی بھی انسان انہی تینوں میں سے کہیں نہ کہیں موجود ہے. اس لیے ان گروہوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، برابر ہیں ان کے لیے. انذرتا ہوں، ڈراؤ تم ان کو. تم کس کی طرف ہے بات جا رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جا رہا ہے، اے نبی، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت رنج کیا کرتے تھے، بڑا دل پہ لیتے تھے اس چیز کو. یہ کیوں نہیں مان رہے؟ حق ان کے سامنے آ گیا ہے، کتاب صحیح ان کے سامنے ہے، ان کو پہچان بھی ہو گئی ہے، پھر بھی نہیں یہ مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، دیکھیں، جو حق دیکھ کے اس کے بعد بھی ضد نہ چھوڑے اور تکبر کے اندر رہے کہ نہیں، جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے. جو کہے میں نہ مانوں، اس کو آپ کیسے منوا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتے نا. اب دنیا میں دیکھیں کئی لوگ ہیں، آپ سر نیچے پیر اوپر بھی کر لیں، وہ جس ڈگر پہ ہیں اور جو انہوں نے کہہ دیا نا، وہ کہتے ہیں بس یہی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات مان کے ہی نہیں دینی. تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو یہ پیالہ بھرنا چاہیں پانی سے، اور آپ اس کو اوندھے منہ رکھ دیں، الٹا کر کے رکھ دیں اس کو پانی کے نیچے، اور اوپر سے پانی کھول دیں، اور سوچیں کہ یہ پانی سے بھر جائے گا، تو بھرے گا کبھی؟ کیا نہیں بھرے گا نا، کیوں نہیں بھرے گا؟ پیالہ ہی الٹا ہے، سیدھا کریں گے تو اس میں پانی جائے گا، گلاس ہی آپ نے الٹا رکھا ہوا، کیسے بھر سکتا ہے وہ؟ اسی طرح کئی لوگ اپنے دل بھی اس طرح سے الٹے کر لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، جب ان میں بات ہی نہ جائے تو پھر کیسے کیسے ہدایت ملے گی؟ تو اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ حق ہے لیکن وہ کہتے تھے ہم نے نہیں ماننا۔ اور رہتی دنیا تک ایسے لوگ ہیں جن کو بس اپنی رائے، اپنی بات اور ہٹ دھرمی کہ بس میں نے اپنی ضد نہیں چھوڑنی، اس پہ رہتے ہیں، پھر ان کو کوئی منوا تھوڑی سکتا ہے۔ تو اس سے مراد تمام کافر نہیں ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایمان لائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ سرکش ضدی لوگ ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا وجہ کیا یہاں پہ یہ چیز لانے کی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ کا قصور نہیں، آپ کے بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے نبی، آپ کیوں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں ان کے پیچھے؟ اصل ان کا قصور ہے، ان کو جب کسی نے ایک روش پکڑ لیا نا، میں نے نہیں ماننا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور کیا ان کی وجہ ہے؟ آگے ایک بات بھی ہے، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ ہے، پردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ اب تو مانیں گے ہی نہیں، ان کے دلوں پر بھی، ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آنکھوں پہ مہر نہیں لگتی، آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اس کی تو بس آنکھوں کے آگے پردہ پڑ گیا، بولتے بھی ہیں ہم کئی دفعہ اپنے عام لینگویج میں۔ تو اب ہم کہیں اوہو ان کا کیا قصور ہے، اللہ نے تو ان کے دلوں پہ خود ہی مہر لگا دی، تو اب یہ نہیں مانتے تو اس میں ان کی کیا فالٹ ہے؟ بات ہے یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کے دل پہ مہر نہیں لگا دیتا، مہر لگانے کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد دیے نا، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ ہم ان کے ذریعے دنیا میں اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھیں، سنیں باتیں اور سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اس کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ آپ بادل دیکھتے ہیں، آپ بارش دیکھتے ہیں، آپ درخت دیکھتے ہیں، چرند پرند دیکھتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے اب کیا حاصل ہونا چاہیے؟ انسان اپنی عقل سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے پھر یہ سوچے، اس کنکلوژن تک، اس بات تک، اس نتیجے تک پہنچے کہ ان کا خالق کوئی ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ جب انسان یہ نہیں کرتا، جو ان اعضاء کا مقصد تھا کہ ان کے ذریعے اللہ کو پہچانو، جب ساری دنیا دیکھ لی، اور دیکھی کیسے، ہاں بڑا خوبصورت سین ہے، بڑے پیارے بادل ہیں، بڑی اچھی بارش برسی، بڑے خوبصورت درخت ہیں، جب یہ کہتے رہے، یہ بھی خوبصورت، وہ بھی اچھا، وہ بھی اچھا، لیکن کبھی بھی ان کے پیچھے ان کے بنانے والے کو، ان کے خالق، ان کے مالک، ان کے قائم رکھنے والے کو، ان کو حسین بنانے والے کو، ان کے سسٹینر کو کبھی بھی نہیں پہچانا کہ کوئی تو ہے جس نے بنایا۔ جب ان قوتوں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں نا، جب ان کو انسان ان سے یہ فائدہ ہی نہیں اٹھاتا جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، تو ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ یہ صلاحیتیں شل ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے مثلاً آپ دیکھیں کبھی بیمار کوئی ہوتا ہے نا، اور وہ مثلاً اس کا بازو ہے، اس کے بازو میں کوئی تکلیف ہو گئی، اب وہ بازو ہلاتا ہی نہیں، ہلاتا ہی نہیں ہے، کوئی سال گزر گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بازو ہلانا چاہے گا، ہلے گا کیا؟ نہیں، فریز ہو جائے گا وہیں۔ اسی لیے تو کوئی چیز بھی ہوتی، وہ فیزیو تھراپی کیوں کراتے ہیں کہ آپ کے یہ آزاد چلتے رہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کتنے بھی مریض ہوں، پھر ورنہ تو وہ ان کی باڈی ویسے ہی سٹیف ہو جائے گی، وہ چل پھر ہی نہیں سکیں گے۔ تو جس عضو کو آپ کام میں نہیں لے کر آئیں، وہ اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نہ عقل استعمال کرتا ہے، نہ پھر کوئی دل سے کچھ سوچتا ہے، نہ کوئی غور و فکر کرتا ہے، نہ ان آنکھوں کانوں کو دنیا جہان کی چیزوں میں لگایا ہوا ہے، پڑھائیاں بھی ان سے ہو رہی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی ہو رہے ہیں، جابیں بھی ہو رہی ہیں، بزنس بھی ہو رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے، وہ سیروں پہ بھی جا رہے ہیں، حسین مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، ویکیشنس پہ جا کے خوبصورت چیزوں کو دیکھ کے ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بنانے والے کو ہی نہیں سمجھتے، تو آہستہ آہستہ یہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، پھر اللہ لے لیتا ہے واپس۔ حق کو دیکھا، پھر کوئی سنانے والا بھی آیا، کوئی بتانے والا بھی آیا، کسی نے سمجھایا اور سمجھ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی نہیں مان کے دینا، اور کائنات بھی گواہی دے رہی ہے، پھر بھی ہٹ درمی پہ رہنا، تو اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے، ختمہ کیا ہے کہ سیل کر دیا، اب اس دل میں کچھ داخل ہی نہیں ہوگا۔ سماعت کے پہ سیل کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ بہرا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ظالم ابو جہل بہرا نہیں ہوا، فرعون بہرا نہیں ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سنتے تو ہیں لیکن نہیں سنتے، وہ دیکھتے تو ہیں لیکن نہیں دیکھتے، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ دل سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ان اعضاء سے رب کو ہی نہ پہچانا، جو مالک ہے اس کو نہ پہچانا، تو پھر کیا پایا؟ دیکھیں جو جانور ہے نا، جانور یہ بھی مالک کی پہچان رکھتا ہے، آپ کتے جیسے جانور کو بھی دیکھیں، اس کو مالک کی کتنی پہچان ہوتی ہے، جب مالک آتا ہے تو دم ہلاتا ہے، جب مالک آتا ہے تو اس کے آگے پیچھے بھاگتا ہے، مالک کہیں لے کے جا رہا ہے اس کے آگے پیچھے ہو رہا ہے، اس کو یعنی جس طرح سے اس کو پسند ہے اس طرح سے کر رہا ہے، کتنی پہچان ہے مالک کی، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ویسا کرتا جیسے اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ تو انسان، تجھے تو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، صلاحیتیں دی، تو ہی اپنے رب کو نہ پہچانا، اس جانور کو تو بہت کم عقل ہے، بہت کم سمجھ ہے، وہ بھی پہچان جاتا ہے مالک کو اور تو ہی نہ پہچانا، تو نے کھایا بھی پیا بھی اسی کا دیا ہوا، اسی کی دی بھی سانس بھی لیتا ہے، اسی کے دیے ہوئے سے دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن سب جگہوں پہ وہ استعمال ہوتی ہے سوائے مالک کو پہچاننے کے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، رب مالک ہے، ہم غلام ہیں، اور غلام مالک کو پہچان ہی نہ پایا تو اس نے اس کو اوبے کیا کرنا؟ تو جب ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ حق نظر بھی آتا ہے پھر بھی بس نہیں ماننا، نہیں ماننا، نہیں ماننا، جب ایک ہی رٹ لگائی بھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ماننا تو نہیں ماننا۔ تو یہ انسانوں کے رویے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مہر لگتی ہے، یہ اللہ نہیں کسی پہ ظلم کرتا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اس کا ظلم تو یہ پھر ہوتا کہ وہ تو عقل ہی نہ دیتا، سمجھ ہی نہ دیتا، کوئی رسول نہ بھیجتا، کوئی کتاب نہ ہمیں بتانے کے لیے بھیجتا، کوئی پیغام نہ آتا کسی کے پاس بھی، یہ آنکھیں کان یہ بھی نہ ہوتے، نہ کوئی نشانیاں ہوتی جن سے اللہ کو پہچان سکتے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھتا مرنے کے بعد کہ یہ کیوں کیا، تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو ظلم ہے، ہمیں کون سا کسی نے بتایا تھا، لیکن لوگوں، تمہیں جگانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے تو اللہ نے بے شمار انتظام کیے، کوئی نبی نہیں کسی کے پاس آیا، تب بھی ان بکھری ہوئی نشانیوں سے اللہ کو پہچان تو سکتے ہو نا، مالک کو تو پہچان سکتے ہو کہ کوئی خالق ہے کہ نہیں، کہ اتنی بھی عقل گئی، لیکن دیکھو انسان کو وہ کیسا غافل ہوتا ہے، اور کیسا اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ وہ خود ہی اپنا ہی مالک بن بیٹھتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اپنا، اور اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب، یعنی عظیم جب آتا ہے نا، جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ عظیم ہے، بڑا ہے، تو کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ دنیا کے ٹارچرز ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے دیے ہوئے ٹارچرز ہوتے ہیں، انسانوں کے دیے ہوئے عذاب ہوتے ہیں، لیکن ٹارچر کا لفظ سن کے ہی ایسے جھرجھری سی آتی ہے کہ اچھا فلان جگہ ٹارچر سے لیں، فلان جگہ ٹارچر کیا جاتا ہے، تو کتنا ڈر لگتا ہے۔ وہ انسانوں کے دیے ہوئے بنائے ہوئے طریقے ہیں ٹارچر کے، اور وہی کتنے خوفناک ہوتے ہیں، جب اللہ کہہ دے عذاب तो जो उसका टॉर्चर होगा वो कितना बड़ा होगा। और जब वो कहते अजाबुन अजीम, तो सोचें जिसको वो बड़ा अजाब कहते, वो अजाब कितना बड़ा होगा। तो कुफर जो है ना, ये अजाब है, अजाब की एक शक्ल है। इंसान को आखरत में तो मिलेगा ही वो अजाब, लेकिन दुनिया में इस अजाब की शक्ल क्या है कि इंसान अपने रब से ही जुदा हो गया, वो अपने पालने वाले अपने मेहरबान रब को ही छोड़ गया, उसकी पहचान ना कर पाया। इससे बड़ा क्या अजाब हो सकता है। ये हैं काफिर लोग, हक को रद्द कर देने वाले, हक को पहचानने के बावजूद ना मानने वाले, हक देखते हैं, हक को समझते हैं, कोई कमी नहीं है उनके सामने के, उनको किसी ने बताया नहीं, उनको किसी ने समझाया नहीं, और एक नहीं, दो नहीं, 100 करोड़ों दफा समझाया गया, और फिर लंबे अरसे तक समझाया गया, फिर भी वो नहीं मानना चाहते। ऐसे लोगों का ये अंजाम बता दिया गया। अब एक तीसरी कैटेगरी आ रही है मुनाफिकीन की। इनका नाम तो नहीं लेके कहा गया कि मुनाफिक हैं, लेकिन ये खसूसियात मुनाफिकों की हैं, इसलिए जब हम इनको पढ़ेंगे आप देखेंगे इतना ही लंबी इनके ऊपर बात की गई कि 13 आयात इनके बारे में। मुत्तकीन की हमने कितनी पढ़ी? 5 सिर्फ। काफरों की कितनी? 2 सिर्फ। इसलिए कि उनकी पहचान करनी है, किसी माशरे में देखना मुत्तकी कौन है, तो ये चीजें चेक कर लो, जिसमें ये है वो मुत्तकी है। काफरों की पहचान देखनी है तो काफिर ये है, ठीक है, उनकी भी पहचान पता चल जाती है। ना मानने वाले, इनकार करने वाले, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तमाम काफिर शामिल नहीं कि आप उनके इंतजार ही ना करें, आप हम आराम से बैठ जाए, नहीं, आप तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, अब तुम इनको डराओ कि ना डराओ, तो इन्होंने तो मानना ही नहीं, तो छोड़ो फिर, हमें क्या जरूरत है हम कोई दावा करें, दावे का काम नहीं करना, अब हमने किसी को तबलीग नहीं करनी। नहीं, ये तमाम के लिए नहीं है, ये उन हठ धर्म और ऐसे मैंने आपको बताया ना जिद्दी किस्म के जो हद से बढ़ जाए उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब मुनाफिकीन का लंबा जिक्र क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो पहले दो हैं वो साफ सामने जाहिर है, मुनाफिक का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो साफ सामने आता भी नहीं और छुपता भी नहीं, यानी ना इधर है ना उधर है, अंदर कुछ बाहर कुछ। अब जो इस तरह की सिफत होती है ना उसको पहचानना जरा मुश्किल होता है, जैसे कोई चीज रंग बदलती हो, अभी आपने देखा कुछ है, अभी देखा कुछ है, कुछ है, तो फिर कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी। एक चीज का एक ही रंग रहता है तो आपको पता है कि भाई हाँ ये सफेद है ये स्याह है, आप सर फर्क वाजी होता है आपके सामने, लेकिन मुनाफिकीन रंग बदलता है, उसकी दोगली पर्सनैलिटी होती है, डबल फेस्ड होता है, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। अच्छा अभी तो ये कुछ था तो अभी कुछ और हो गया, और फिर कोई तीसरे वक्त में कुछ और है, तो जाहिर है मुश्किल होगा ना। और चूंकि ये चीज अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इनकी सिफात इतनी लंबी बताई गई ताकि हम इनको पहचाने, और लोगों में नहीं इनको पहचाने कि फला अच्छा ये आज मैंने पढ़ लिया ना यही लोग हैं मुनाफिक। नहीं, ये निशानियां इसलिए हैं ताकि हम इनके जरिए अपना जायजा लें कि हम में तो निफाक कहीं है नहीं, हम तो नहीं कहीं इन खसूसियात के हामिल हो गए, क्योंकि ये खतरनाक है बहुत, और इनका भी अंजाम अजाबुन अलीम है आप देखेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे अजाबुन अलीम हो, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग देखें कि ये जो सिफात यहाँ पे बताई गई है बेसिक सिफात, कहीं इस क्राइटेरिया पर मैं तो नहीं पूरी उतरती, ठीक है। हम देखते हैं कि सहाबा कराम, मैंने आपको पहले भी बताया था, हजरत उमर जैसे इतना डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, इतनी फिक्र उनको होती थी, मेरे अंदर तो नहीं मुनाफिकत। हजरत उनसे हुजैफा से, हजरत हुजैफा को मुनाफिकीन के नाम मालूम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताए थे, सबके तो नहीं, जो तबूक में जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी उन मुनाफिकीन के नाम बताए थे। तो अच्छा तोमर उनसे पूछते रहते थे कि कहीं उस लिस्ट में मैं तो शामिल नहीं हूं। इसी तरह हजरत हंजला है गसीलुल मलाइका, जिन्होंने सीरत पढ़ी भी उनको अगर याद हो तो। हजरत हंजला जो है वो कहा करते थे, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बताते हैं हम आपकी मजलिस में बैठते हैं, हम हमारा ईमान बहुत होता है, बहुत हम हमारे दिल ऐसे प्योर हो जाते हैं जब हम अपने घरों में जाते हैं, बाल बच्चों में जाते हैं, तो जाहिर है ईमान की वो हालत तो नहीं रहती। तो इसलिए वो उन्होंने सोचा मैं तो मुनाफिक हो गया हूं, यहां पे कुछ हूं, घर जाके कुछ और हूं। तो आपने फरमाया नहीं, ऐसी बात नहीं, ईमान का भी लेवल्स होते हैं। जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो बहुत ईमानों का, घर जाके उतना उस तरह से नहीं हो सकता। तो ये चीजें कि आपको बताने का मकसद ये है कि सहाबा को भी कितनी फिक्र थी कि हमारे अंदर निफाक तो नहीं है। हजरत उमर अशरा मुबशरा में से उनको कितनी फिक्र है। तो ये ऐसी चीज है जिसकी वाकई फिक्र करनी चाहिए। कहा जाता है कि निफाक से अपने आप को पाक सिर्फ मुनाफिक ही समझता है, मोमिन तो हर वक्त डरता रहता है मेरे अंदर निफाक तो नहीं है। ठीक तो इसलिए इस इन सिफात को गौर से पढ़ना है, गौर से समझना है और देखना है कि ये कैसी सिफात हैं। अपने आप को सबसे पहले चेक करना है, अपना मुहासबा करने के लिए ये सिफात आपको हेल्प करेंगी कि हम अपनी चेकिंग कर लें। ये अल्लाह अगर हमारे अंदर निफाक की एक रमक भी है तो अल्लाह ताला इसको हमारे दिल से निकाल देना, अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ कर देना। ठीक है, तो अब हम मुनाफिकीन की बात पढ़ने जा रहे हैं, जो वीक कैरेक्टर के लोग हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वा मीन अन्नासी, लोगों में से मन यकूलू, जो कहता है, लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है, क्या कहता है, आमन्ना बिल्ला, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वा बिल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर, वा मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं है। आप सबसे पहली बात देखें यहाँ पे, इन अल्लदीन कफरू, पिछली आयत में कहा गया, यहाँ पे ये नहीं कहा गया इन अल्लदीन नाफकू, यहाँ पे कहा गया वा मीन अन्नास, लोगों में से कोई ऐसे। क्या पता चला इससे? अल्लाह ताला ने तो खुद भी पॉइंट आउट करके ऐसे नहीं कहा वो निफाक वाले लोग, ये ऐसे लोग। क्यों? इसलिए कि अल्लाह उनको चांस देना चाहता है कि तुम पलट आओ। ठीक है, और अल्लाह ताला उनके लिए तौबा का दरवाजा खुला रखता है जब तक वो जिंदा है। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे नहीं कहा बस लोगों में से कोई है। वो पता है मुनाफिकीन का मामला तो यानी एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके सिवाय तबूक के और किसी वक्त भी ऐसे नहीं बताया गया, फलां मुनाफिक एक लिस्ट दे दी जाती, जब वही उतर ही रही थी तो एक लिस्ट दे दी जाती, ये मुनाफिक है, बस इनके साथ ना आपने बात करनी है ना कुछ है, लेकिन उसमें उनकी रुसवाई होती, कभी वापस ना पलटते फिर। या तो उनको ढीठ करना नहीं था, जब फिंगर पॉइंटिंग होती है तो लोग ढीठ हो जाते हैं। तो जब भी बात करनी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी क्या था, डायरेक्ट किसी को पिन पॉइंट नहीं करते थे, तुम फलाने, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, बल्कि जब किसी को कोई चीज देते थे तो कहते थे लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसे करते हैं। वो भी हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा यही नहीं होता था, लोग ये करते हैं, लोग ये करते हैं, लोग ये करते हैं। आजकल तो हमारे ज्यादातर जो जो भी लोग लेक्चर्स देते हैं, दर्स देते हैं, बस हर वक्त लोगों की बहसें, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग ऐसे। ओ भाई, इस तरह कहने से क्या लोग ढीठ नहीं हो जाएंगे? हर वक्त की नहीं, हाँ कभी कभार की बात अलग है, हर वक्त यही मौजू बनाए रखना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती, पॉजिटिव तरह से बात करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसे ग्रोह का जिक्र किया और फरमाया लोगों में से कोई एक ऐसा है जो कहता है, क्या कहता है, आमन्ना, हम ईमान लाए। उसको तो कहना चाहिए मैं ईमान लाया, वो तो यकूलू है ना, यकूलून तो नहीं है, बहुत सारे तो नहीं, एक बंदे की बात हो रही है कि लोगों में से कोई एक ऐसा है जो कहता है आमन्ना, हम ईमान लाए, क्यों ऐसा क्यों कहता है? वो ब्लेंड इन होना चाहता है ना कि हम सभी ईमान लाए, मैं भी सबके साथ ही हूं, जैसे बाकी ईमान लाए वैसे ही मैं भी ईमान ला रहा हूँ, लोग मुझे ना इनसे बाहर ना समझे ईमान वालों से, और वह बिल यौमिल आखिर और आखरत पर भी हम ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फैसला दे दिया, फिर ईमान लाए, लेकिन जब वो किसी जगह फॉर्म फिल करने जाएगा तो क्या लिखेगा, रिलीजन में क्या लिखेगा, इस्लाम। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है, ये नहीं फरमाया वमा हुम बिमुस्लिमीन, वो मुस्लिम नहीं है, क्यों? मुस्लिम जो होता है इंसान, इस मुसलमान कैसे बनता है, शहादा लेके, कलमा शहादत पढ़ के इंसान मुसलमान होता है। लेकिन ईमान क्या होता है? ईमान तो दिल में होता है, ईमान तो दिल की हालत है। इंसान कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन उसका दिल ईमान वाला है या नहीं, ये कोई इस चीज की गारंटी नहीं। अगर कलमा पढ़ लिया तो दिल भी ईमान वाला हो गया, मोमिन हो गए, समझ आई? ईमान अलग है, इस्लाम अलग है, इस्लाम जाहिर में है, ईमान अंदर है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया मा हम भी मुस्लिमीन, क्योंकि वो तो शहादा ले चुके, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जकात देते हैं, ये सब काम करते हैं, तो कहा नहीं जा सकता इनको कि मुस्लिम ही नहीं है, कलमा पढ़ लिया मुस्लिम हो गए। लेकिन अल्लाह ने कयामत के दिन इससे फैसला नहीं करना कि किसने शहादा ली थी, किसने कलमा पढ़ा था, अल्लाह ने फैसला इस बेस पर करना है कि किसके अंदर ईमान था। हम बोलते ना अंदर ईमान है कि नहीं, हम ये नहीं कभी कहते आपके बाहर ईमान है कि नहीं, कभी नहीं ये कहते, अपने आप के लिए भी कहते ना मेरे अंदर ईमान है, तो हम सबको पता है, लाशौरी तौर पे भी नहीं भी बताया जाए, हम सबको पता है ईमान अंदर होता है, उससे फिर जो फ्रूट्स निकलते हैं, उससे जो नतीजे निकलते हैं, वो अमल की सूरत में बाहर जाहिर होने लगते हैं। जाहिर है, देखिए ना, आप मसलन है किसी जगह पे कुछ कुछ पक रहा है तो उसकी खुशबू बाहर तक आती है ना, तो इसी तरह जब ईमान अंदर होता है तो उसकी खुशबू आती है बाहर तक, अमल में पता चलता है कि जी ईमान है इसके पास। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है, मुस्लिम हो तो होते भी रहे लेकिन ईमान वाले नहीं। और अल्लाह को ईमान चाहिए आपसे, सिर्फ इस्लाम नहीं चाहिए और इस्लाम के दावे नहीं चाहिए। अब ऐसा बंदा किसी जगह पे भी जाएगा क्या कहलाएगा, मुसलमान, मुसलमान कहलाएगा ना, दुनियावी तौर पे तो वो मुसलमान ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां बता दिया कि अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुसलमान कहलाते हो या नहीं कहलाते, अल्लाह ताला के लिए क्या चीज है कि ईमान तुम्हारे अंदर है या नहीं। उसने लोगों की बातों से फैसले नहीं करने, हम अपने नाम रख लें, फातिमा रख लें, हम साइमा रख लें, हम कोई मुसलमान खतीजा नाम रख लें, जैनब, इससे नहीं कोई फर्क पड़ता, बात यह हमारा ईमान क्या है, क्योंकि यही चीज है जो सबसे डरा देने वाली है यहाँ पर, कि ये साफ सामने थोड़ी नजर आता है, सामने क्या चीजें नजर आ रही, नाम नजर आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ हाँ मेरा अल्लाह के ऊपर ईमान है, हाँ मेरा आखरत पे ईमान है, हम तो यही देखेंगे ना, और इसी से हम अपने आप को भी धोखा देते हैं कि हाँ ठीक है मैंने ये कह दिया तो मैं तो मुसलमान ही हूँ, और मुसलमान तो सीधा सीधा जन्नती है। अल्लाह ताला ने तो रिजेक्ट कर दिया इस ईमान को, हम भी मोमिनीन आ गया तो मतलब क्या है, बिल्कुल भी नहीं है मोमिन, जरा सा भी नहीं इनके अंदर ईमान, कोई ईमान नहीं है, इनका ईमान से कोई वास्ता नहीं है, मा हुम भी मोमिनी। ठीक, तो इससे हमें अच्छी तरह ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जुबानी दावों की अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं है, कि हम जुबान से दावे करते रहे, हाँ हम तो अल्लाह की खातिर ये कर देंगे, हाँ तो हम अल्लाह की खातिर जान भी देने को तैयार है, हाँ हम अल्लाह की खातिर ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अल्लाह की खातिर ये काम कर रही हूं ना, बोलने से क्या है, बोलने को तो कोई कुछ भी कह दे, अल्लाह को तुम्हारी बातों से नहीं कोई दिलचस्पी, ना उसने तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारी बातों के मुताबिक करना, ये तो इंसानों को तो आप कह के इससे खुश कर सकते हो, या इंसानों को ये बातें कह के उनको राजी कर सकते हो। अल्लाह तो दिल देखता है, वो तो दिलों के अंदर जानता है इनमें ईमान कितना, दिलों के भेद जानता है, बिदात सुदूर दिल के अंदर की बातें उनको भी जानता है। उसको कैसे कोई ये कह के धोखा दे सकता है कि मैं ईमान लाया और अंदर ईमान ना हो, जब वो दावा कर रहे हैं ईमान का और अल्लाह ताला रिजेक्ट कर रहा है उनके ईमान को। अब हम कहे हाय वो बेचारे तो कह रहे हैं हम ईमान लेकर आए, इसलिए कि वो जुबान से कह रहे हैं दिल में नहीं है, ठीक है ना। युखादिउन अल्लाह वल्लदीन आमनु, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। अब मैंने आपको क्या बताया, युखादिउन में क्या है, अल्लाह को कोई धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता ना। मोमिन भी साहिबे बसीरत होता है, नजर तो आ जाती है मुनाफिकों की हरकतें कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं। तो युखादिउन में क्या है, हमने तर्जुमे में लिखा वो धोखा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों ने धोखा दे दिया। मैंने आपको बताया था खौ के ऊपर जो खड़ी अलिफ है ये बता रही है कि वो ट्राई करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते, लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि वो धोखा दे दे। कैसे कैसे करते हैं, वो समझते हैं कि जैसे हम ये मुंह से बोल के कह रहे हैं ना हम ईमान लाए हम ईमान लाए, तो पता नहीं अल्लाह ताला ने भी हमारी इन्हीं बातों पर यकीन कर लेना, ठीक है। इसलिए वो ये वो लोग हैं जो अपनी तौर पे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे हम यहाँ पे दुनिया में बोल बोल के बता बता के ईमान के दावे कर कर के लोगों को कायल कर रहे हैं और अपना बता रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, इसी तरह बस हमने अल्लाह को भी कह दिया। वमा यखदाउन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, और नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को, और वो शऊर नहीं रखते और उनको समझ ही नहीं है इस बात की कि ये धोखा वो अपने आप को दे रहे हैं। कैसे, वो अपने आप को समझते हैं कि हम कितने अकलमंद है वैसे ना, हमने इनको कैसा धोखा दे दिया, हालांकि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो धोखे में नहीं आता इनके, अल्लाह तो इनकी बातों में नहीं आएगा। अब क्या होगा, इन्होंने अपने आप को धोखा दे दिया, इन्होंने जिस चीज को समझा कि हाँ वो सही कर रहे हैं और ये इसके अंदर बड़ा फायदा है ये करने में, वही तो इनका नुकसान है, वो तो पागल है, उनको तो समझ ही नहीं आई, यही तो नुकसान है कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो समझते हैं ना हम इस तरह से बड़े अच्छे चलेंगे और हम अपना बड़ा फायदा हो रहा है हमारा, हालांकि इसी में उनका नुकसान है, उन्होंने अपने आप को ही धोखे में डाल दिया। अब देखें यहां पर थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि ये मुनाफिकीन की हिस्ट्री क्या थी, ये कैसे वजूद में आए, ये कौन लोग थे उस वक्त के, तो फिर हाँ आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था, बल्कि वहां पे तो जो था वो मुंह पे था, लोग बल्कि ईमान दिल में छुपा के रखते थे, मुंह पे तो जाहिर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो डरते थे काफिरों से, तो वहां पे तो इस तरह की चीज नहीं थी, क्योंकि पता है ना आपको कि वहां पे ईमान का दावा करने का मतलब ये था एक ऐसा टॉर्चर, एक ऐसी मुसीबत अपने ऊपर ले लेना। अल्लाह ने उनको ईमान वाला माना है, अलग उन्होंने अपने ईमान का ऐलान नहीं किया हुआ था लोगों में, कुछ छुपे हुए भी थे, बहुत सारों का वो पता है वो ऐलानिया ही मुसलमान थे, कुछ छुपे हुए भी थे, लेकिन अल्लाह ने उनके ईमान को एक्सेप्ट किया, ठीक है एक बात समझ लें। अच्छा जब मुसलमान मदीना आए हिजरत करके और यहाँ पे स्टेब्लिश होने लगे, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत स्टेब्लिश हो गई यहाँ पे, औस और खजरत ने आपको अपना बड़ा मान लिया, यहूद ने भी आपको अपना मुनसिफ मान लिया कि ये फैसले हमारे यही किया करेंगे, तो समझ लें एक तरह की हुकूमत मदीना की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई। अब जो लोग मुसलमान हुए थे वो तो बड़ी खुशी से मुसलमान हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अब हुकूमत तो इनकी कायम हो गई है, फिर 2 साल बाद ही बदर की जंग हो गई, उसमें भी मुसलमान जीत गए, तो ये तो फिर बहुत ऊपर जा रहे हैं, हकूमत इनकी देखें जहां की भी हकूमत होती किसी की आप खुद ब खुद उससे जरा इंप्रेस ही होते हैं, खास तौर पे जिनके मफादात होते हैं वो कहते हैं भाई हकूमत के साथ लग जाओ, हकूमत के साथ देखे नहीं आप कई लोग चिमट जाते हैं हकूमत के साथ, जिनको हम लोटे भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, कि ये अपने मफाद की खातिर जो हुकूमत आती है उसके साथ चल पड़ते हैं, उनके गुनगाने ही शुरू कर देते हैं, वो अपने फायदे चाहते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि ये हुकूमत भी इनकी, देखो अब इनको तो फतह भी मिल गई है, तो अब इनके साथ लगने में हमारा फायदा है, इनके साथ हो जाएंगे तो कल को फायदे हमें मिलेंगे। फिर ये कि फिर इनकी कोई दुश्मनी भी नहीं वो मोल लेना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था कि मुसलमान होने का मतलब है कि अब कुरैश के साथ तो दुश्मनी हो गई, और कुरैश वॉज लाइक अ सुपर पावर, वहां पे तो कुरैश को यही समझा जाता था सबसे रिस्पेक्टेबल कबीला, और काबा के मुतवल्ली, और उनको बहुत हाई रिगार्ड दिया जाता था। तो कुरैश के साथ दुश्मनी लेना बहुत बड़ी बात थी, और इर्द गिर्द के कबाइल से भी कोई भी मुसलमान नहीं था, तो हम तो आइसोलेट हो जाएंगे, और इन मुसलमानों को क्या पता आज को ये है कल को इनके साथ पता नहीं क्या होता है, और फिर हमारा क्या बनेगा। तो देखो वहां पे भी बना के रखो भाई, किसी के साथ भी हमें दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी इनकी खातिर हम ये नहीं कर सकते कि हम बाकियों को छोड़ दें और हम उनके साथ नहीं कर। ये तो कहते हैं जी हमारे साथ ही वफादारी करो, अल्लाह के वफादार रहो, रसूल के वफादार रहो, और इनके बढ़ के, इनसे बढ़ के किसी के साथ नहीं तुम्हारी वफादारी होनी चाहिए, तो ये क्या बात हुई। तो ये चीज फिर ये चीज उनके लिए काबिले कबूल नहीं थी। तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो के सोच के आए कि हम मुसलमान तो नहीं हो रहे, सिर्फ हम सामने सामने से कलमा पढ़ लेंगे लेकिन हम अंदर से वही हैं जो कि हम हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे दूसरे, वो भी मुनाफिकीन आगे जाके बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो सच्चे दिल से इस्लाम लेकर आए, उन्होंने कहा कि हाँ ये हमें अच्छा लगता है, अच्छा दीन हमें, आप कायल भी हुए इससे, कन्विंस्ड हो गए थे, मुसलमानों से भी मुतासिर थे। अब क्या हुआ, लेकिन जब इस्लाम में आ गए तो उन्होंने देखा कि इस्लाम तो बड़ा कुछ मांगता है, ये तो सिर्फ कलमा पढ़ने तक थोड़ी था, अगर सिर्फ उतना होता तो फिर तो कोई मसला नहीं थी, जैसे हम कलमा पढ़ के उसके बाद जो मर्जी करो, कलमा पढ़ने से क्या हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहना तो हमने वही है, सारे तौर तरीके, सारा उठना बैठना, जिंदगी गुजारना, सब चीज वही है, तो कलमा पढ़ लेते हैं क्या फर्क पड़ा। उन्होंने कहा भाई कलमा तो हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या पता था कि आगे इतनी हमसे डिमांड की जाएगी। कभी कहा जाता है कि भाई आप जंग के लिए निकलो, कभी कहा जाता है अपने माल लगाओ, कभी कहा जाता है अपना घर बार छोड़ के तो चलो आप हमारे साथ, कभी कुछ, तो आए दिन तो नई से नई डिमांड्स हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, हम मस्जिद चले गए, हमने नमाजें पढ़ ली, चलो यहाँ तक भी ठीक, मगर जान माल लगाना यह अब कैसी बात है, तो हमसे क्या क्या डिमांड करने शुरू हो गए। अब ये था ज़ोफ़े ईमान, कमजोरी ईमान की। अब जब ईमान में कमजोरी आ गई है, कमजोर ईमान है, तो इसके बाद जब ये मुनाफिकीन के साथ बैठेंगे तो फिर वो जो पक्के, जिन्होंने शुरू दिन से, जो मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बताई है, जिन्होंने शुरू दिन से सोच के ही आए हैं कि हम नहीं है मुसलमान, अकीदे में ही उनके खराबी है, जब ये इनके साथ बैठेंगे तो वो इनको और कायल करते हैं कि देख देखो ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, ऐसा भी ईमान की क्या बात हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो ज़ोफ़े ईमान है, एक बीमारी, छोटी बीमारी थी ज़ोफ़े ईमान, अगर ये अपना ईमान पक्का करते तो कुछ बेहतरी आ जाती, लेकिन वो कमजोर ईमान और कमजोर होता गया, और हत्ता के फिर होते होते मुनाफकत में एंटर हो जाता है। यानी जब बीमारी देखे ना, कोई भी एक उसके स्टेजेस होते हैं, निफाक के भी स्टेजेस हैं, बीमारी का कोई फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज पे पहुंच गई तो बस फिर बंदा खत्म। फर्स्ट स्टेज पे इलाज हो सकता है सेकंड स्टेज पे भी हो सकता है, लेकिन जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो फिर तो डॉक्टर भी गिव अप कर देता है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह निफाक की बीमारी है, शुरू के अंदर ही अगर ज़ोफ़े ईमान है और इंसान उस पर काबू पा ले, जब एतराजात होने लगते हैं इस्लाम के ऊपर, जब ये होने लगते हैं, उंगलियां उठने लगती, इस्लाम ये क्या कहता है, इस्लाम ये क्यों कहता है, इस्लाम में ये क्या बात हुई, इसकी तो कोई लॉजिक नहीं समझ आती, जब ऐसे एतराजात शुरू हो ना, उसी वक्त उसका इलाज जरूरी है। अगर उस वक्त उसका इलाज नहीं हुआ, ये आपको आज के सिनेरियो में भी मैं बता रही हूं, अगर उसका इलाज उसी वक्त नहीं किया गया तो वो एतराजात फिर उतने नहीं रहते, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। फिर इंसान कहने लगता है लो, फिर उस और भी बातें कई अजीब लगने लगती हैं। फिर कहते हैं ये तो लॉजिकल ही नहीं है, ये तो मजहब, ये तो मुझे तो इसकी बातें ही नहीं समझ आती। फिर और भी इंसान बढ़ने लगता है, मैं नहीं मानता इसको, और बढ़ते बढ़ते फिर वो कुफर तक पहुंच जाता है, अल्लाह के इनकार तक पहुंच जाता है, कुरान का इनकार कर देता है, हदीस का इनकार कर देता है। तो शुरू के अंदर मर्ज को पकड़ना जरूरी है। तो ये देखें, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता चल जाए ना, तो उससे फिर आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि क्या उस वक्त का क्या सिनेरियो था जब ये आयात उतरी, तो क्या था। क्योंकि मदनी सूरत है ना, मदीना में ही मुनाफिक थे, मक्की सूरतों में मुनाफिकीन का जिक्र नहीं है। तो इन लोगों के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि ये तो यानी जो लोग सच्चे दिल से भी मुसलमान हुए, लेकिन उसके बाद उनके लिए ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। और क्यों मुश्किल हो गया? देखें, ऐसे तमाम लोगों को जो मुनाफिक है ना, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी दुनिया को नहीं छोड़ सकते। छोड़ने से मतलब है अपनी दुनिया का नुकसान नहीं ले सकते किसी तरह से। उनको ये होता है कि हमारी दुनिया सिक्योर रहे, दुनिया की सिक्योरिटी चाहते हैं हर तरह से। हमारा माल, हमारी जान, हमारे घर बार, हमारे सब चीजें सिक्योर रहनी चाहिए। और सिक्योर रहने के लिए हम अब सब कुछ यहाँ तो इस्लाम के लिए थोड़ी लगा सकते हैं। अब ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दिया, लेकिन ये ना समझो कि हम मतलब सब कुछ देने को तैयार हैं यहाँ से। नहीं, फिर वो दूसरी तरफ भी अपनी रखते हैं, ताकि वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये सारे अंडे एक बास्केट में ना डाल दो, क्या पता क्या क्या होता है। वो कहते थे एक जगह पे ही ना सारा अपना रिस्क ले लो, ये तो रिस्क ही है। इसका मतलब है ना कि दिल कायल नहीं है, अभी दिल में खोट है। दिल का जो खोट होता है ना, देखें हम इसको निफाक किसी को कहते हैं, हम अपने लिए खोट वाली चीज कभी पसंद नहीं करते। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? खालिस चीज हो। देखिए, जब हम सोना लेने जाएं, जब हम दूध लेने जाते हैं, जब हम कोई भी चीज, तो हम कहते हैं नहीं, मिलावट वाली नहीं चीज चाहिए, खालिस चीज दो, खोट नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जब अल्लाह को ईमान देने लगता है इंसान, अल्लाह के आगे ईमान पेश करे, ईमान ही सबसे कीमती चीज है ना। अल्लाह ताला ने तो डिमांड किया सच्चा ईमान, जिसकी बेस के ऊपर ही जन्नत है। जब इंसान अल्लाह के सामने जो ईमान पेश करता है उसमें खोट है, तो क्या अल्लाह एक्सेप्ट करेगा? हम जैसे इंसान होके, हकीर इंसान होके, हम खोट को पसंद नहीं करते, और अल्लाह को हम सोचते हैं कि खोटे ईमान वो कबूल कर लेगा। खोटा ईमान नहीं वो कबूल करेगा। ये धोखा दे रहे हैं अल्लाह और उसके ईमान वालों को, और उनके सामने बन बन के दिखाते हैं कि हम ईमान वाले, ईमान वाले। इनके तो दिल खोटे हैं, इनके दिलों में बीमारी है। फी कुलूबिहिम मरद, अल्लाह ताला ने फरमाया बीमारी दिल में है इनके। जुबानों के ऊपर तो अल्लाह अल्लाह ही है, बीमारी है दिल में। और दिल को कौन सिर्फ देख सकता है? अल्लाह ताला, उसकी नजर दिलों पे ही होती है। और जब भी तो ये देखें, जब दाल में कोई काला, कुछ काला होता है ना, तभी इंसान ऐसी बातें करता है। आप देखते हैं, आप अभी बच्चे ने कुछ शरारत की हो ना, छोटे बच्चे खास, और उनको इतनी समझ नहीं होती, तो आप फौरन कमरे में आती हैं तो कहते हैं मैंने तो नहीं कुछ किया, तो आप उसी वक्त पता चल जाता अच्छा कुछ किया ही है, फिर इसका मतलब कुछ हुआ ही होगा। तो वो आके कह रहे हैं हम तो ईमान लाने में, हम ईमान लाए अल्लाह पर, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। जब आपने कलमा पढ़ लिया तो उसके बाद बार बार आके ये कहने की क्या जरूरत है? लेकिन वो क्यों बार बार कहते हैं? वो खुद दाल में काला है, खुद जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात, या खुद अपने अंदर गिल्टी है, उनको पता है कि अच्छा ये तो पता नहीं हमें मानेंगे ही नहीं, तो बार बार आके कहते हैं। देखें अल्लाह ताला ने किस तरह से पोल खोले हैं, इससे पता चलता है अल्लाह दिल की बारीकियों को, सोचों तक को जानता है। और जब इंसान धोखा देता है, डबल फेस रहता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, हदीस में आता है बदतरीन शख्स है दो रुखा। बदतरीन शख्स कौन है? दो रुखा है, दो मुंह वाला होता है, यानी इधर कुछ उधर कुछ।
कुफार के ऊपर देखें उस तरह से आप देखेंगे आयात ऐसे नहीं आई, बस उनका बता दिया वो अजाबुन अजीम है उनके लिए। मुनाफिकीन पे अल्लाह ताला का इतना गुस्सा है कि फरमाया फिर दरकिल असवली मिनन नार, वो कहाँ होंगे, आग के भी सबसे निचले हिस्से में। और वजह ही क्या है, ये डबल फेस होना, इधर उधर, उधर की कुछ उधर कुछ, मफाद के बंदे, मफाद है ना, ये मेरा फायदा ना कहीं चला जाए, हाय यहां से भी मुझे फायदा मिलता रहे, मुसलमानों को जब कोई फतूहात होंगी तो जाहिर है कुछ मिलेगा ना माल, यहां पे भी मिलता रहे वहां पे भी मिलता रहे, वहां से भी कुछ ना कुछ ले लूं, और भाई सबके साथ बना के रखनी है, डिप्लोमेसी से चलो। आपने देखा होता है कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, वो हर जगह ही जाके उधर बैठेंगे तो उनकी हाँ में हाँ और उनकी तारीफें, इधर आएंगे तो दूसरे तरफ उनकी तारीफें उनकी हाँ में हाँ, सारी तरफ जाएंगे अपना उल्लू सीधा रखेंगे, बाकी दूसरों की बुराइयां उनके सामने, उनकी बुराइयां उनके सामने, ताकि हम अच्छे बने रहे, हमारा 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 मामला सबके साथ सही रहे। तो ये वो लोग हैं जो करते कुछ हैं, अंदर कुछ और है, और बातें इनकी देखो तो समझ आ गया हमें कि अल्लाह बातों से मानने वाला नहीं है। ये बात समझ आ गई है ना, हम बातें बहुत करते हैं, हमारे तकरीरें देख लें, दर्स देख लें, हमारी बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं, बातों में जमीनों आसमान के कलाबे मिला देंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ये, और हम तो ऐसे और हम, लेकिन उसके बाद क्या है हम, क्या इन तकरीरों से अल्लाह खुश हो जाएगा, क्या बातों पे ही अल्लाह ने नंबर दे देने, सोचने की जरूरत है। देखिए मैं तमाम आयात को आपके सामने इस तरह से रखना चाहती हूँ कि हम अपने मुहासबे कर सकें। कुरान पाक कोई हिस्ट्री की किताब नहीं है कि बस हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अच्छा वो जी ऐसे थे वो ऐसे थे, ओ अच्छा चलो ठीक है आज का सबक खत्म हो गया, आगे भी आएगी बनी इसराइल की बात। हम अगर बातें सुन के दूसरों की और खुद आराम से बैठे रहे तो हमने क्या सीखा, असल जरूरत इस चीज की है कि हम कुरान पाक से उस आईने में, इसके जरिए ये आईना है, इसके जरिए आईने में अपने आप को देख सके और अपनी कमियां कोताहियां खराबियां दूर कर सके। क्यों, इसकी क्या जरूरत है, गंदे मंदे ही रह लेते हैं, कौन सा कोई देख रहा है, हम तो साफ तब होते ना, आज कपड़े बदल लिए, आ कहीं जाना है या किसी ने आना है, उसके बगैर तो हमने कपड़े भी नहीं बदलने, मुंह भी नहीं धोना, जब कोई आना ही होगा तो फिर हम अपने आप को साफ करते हैं ना, किसी से मुलाकात होती है तो फिर हम अपने अपना भी ख्याल करते हैं, तो क्या जरूरत है, मैंने आईने में हमने अपने दाग धब्बे देखे हैं तो कौन सा कोई और देख रहा है, वो तो अंदर ही है ना। हाँ कोई देख रहा है, वो जिसके साथ हमें मुलाकात करनी है, और मैंने आपको क्या बताया था, कुरान अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयार करता है इंसान को, तो ये दाग धब्बे जो कोई और नहीं देख सकता उसको अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह की नजर में है, लिहाजा उनको साफ करना जरूरी है, और साफ करेंगे ताकि हम अल्लाह की मुलाकात के लिए इतने तैयार हों, निखर जाएं, धुले हुए हों, और इस मुसलसल सफाई की जरूरत है। क्या एक थी ना, आप नहाते हैं या मुंह हाथ धोते हैं या फिर बहुत दफा करते हैं, ऐसा हफ्ते में कई दफा करते हैं, रोजाना करते हैं, तो इसी तरह अपने बातिन की भी धुलाई एक दफा नहीं जिंदगी में होती, ये तो मुसलसल काम है, मुसलसल, क्योंकि मुसलसल गंदगियां पड़ती रहती हैं। तो ये मुनाफिकीन का जो जिक्र आ रहा है ये भी हमें अपने मुहासबे के लिए चाहिए, हम भी कहीं बातें करने वाले ही तो नहीं है, सिर्फ जिधर बैठती हूँ एक बातें शुरू कर देती हूँ, मैं ऐसे मैं ऐसे मैं ऐसे मैं तो ये मैं तो वो मैं तो वो, और लोग वाह वाह कर रहे हैं, जी वाह जी वाह बड़ी नेक है इसने तो बताया ये ऐसे करती, तो लोगों के रजिस्टर में लिखी हुई बातें या लोगों की कही भी बातें थोड़ी हमारी गिनी जाएंगी, या हमारी अपनी कही भी बातें, वो तो अल्लाह देख रहा है कि हमारे अंदर क्या है, तो मत समझें कि इससे हमने धोखे में डाल दिया अल्लाह को भी और लोगों को भी। अब असल में तो अपने आप को ही वाकई धोखा देना होता है कि कर कुछ नहीं रहे, लेकिन सोच रहे बातें करने से ही ना मेरा रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा नेकियों का और मैं बिल्कुल पूरी उतर जाऊंगी इस पे। नहीं, बल्कि ये अपने आप को धोखा, क्योंकि अमालनामे में तो कुछ भी नहीं जा रहा और खुद शऊर भी नहीं है, शऊर से भी खाली। यहां पे उनको कहा गया, इनको खुद भी पता नहीं ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि समझ रहे दूसरों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। तुम कह रहे हो बड़ा अच्छा हो गया तुम्हें फलां को बताया, वो भी कायल हो गई, मान गई वो भी। उसके मानने से क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो अगर आप सोचते हो कि मैं किसी के ऊपर अपनी नेकी की धाक बिठा के और ये समझूं कि हाँ भाई मैं तो बड़ी कंप्लीट हो गई, बड़ी नेक हो गई मैं, क्योंकि लोगों ने आज मेरी बड़ी तारीफ की है, कह रहे थे आपकी जैसा तो मैंने देखा नहीं कोई। तो इसके ऊपर अपने आप को धोखा देना है ना ये, कि नहीं? और फिर शऊर भी नहीं है।